नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ शंकर अर्निमेश की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि आरएसएस के सहयोगी संगठन बजट में आखिर क्या चाहते हैं, 51 विश्वविद्यालय या पुरानी पेंशन योजना या कुछ और। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विभिन्न संगठन 2023-24 के बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी विश लिस्ट पेश करने से पीछे नहीं हट रहे। सीतारमण अगले साल 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। दि प्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक 51 काउ सेंट्रिक यूनिवर्सिटी स्थापित करना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन आय में मुद्रास्फीति के आधार पर वृद्धि, चीनी आयात को हतोत्साहित करने के उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन आदि उन मांगों की एक वानगी भर है जो 21 से 28 नवंबर के बीच विभिन्न स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श के दौरान संघ परिवार से जुड़े संगठनों की तरफ से सीतारमण के समक्ष उठाई गई। हालांकि आरएसएस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक स्रोत है, संगठन और उसके सहयोगी अक्सर ही सरकार की राजकोषीय नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं रहते हैं और कभी कभी उन्हें पुनर्निर्धारित करने पर भी जोर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आरएसएस ने पिछले साल बेरोजगारी संकट दूर करने, घरेलू उद्योगों को प्रमोट करके आत्मनिर्भरता बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफटीआई पर निर्भरता घटाने के उद्देश्यों से भारतीय आर्थिक मॉडल पर एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को आरएसएस से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच आदि संगठनों ने इसी माह सरकार के समक्ष पेश किया था। 22 नवंबर को कृषि संगठनों के साथ सीतारमण की परामर्श बैठक के दौरान भारतीय किसान संघ यानी BKS ने किसानों की मुश्किलें दूर करने और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी मांगों की एक लंबी चौड़ी सूची पेश की। बैठक में मौजूद रहे BKS के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने दि प्रिंट से बातचीत में कहा कि संगठन ने यह बात उठाई कि किसान भोजन के उत्पादक हैं, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई इनपुट पर GST के तहत टैक्स लगता है। इसके अलावा उन्हें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। मिश्रा ने कहा कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकेगी जब हम उन्हें पेश आने वाली दिक्कतों को दूर नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि BKU ने किसानों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट और कृषि इनपुट के लिए GST हटाने जैसे प्रावधानों की मांग की है। मिश्रा ने आगे कहा कि इसके साथ ही सरकार को उर्वरक निर्माताओं के माध्यम से सब्सिडी देने के बजाय उसे सीधे लाभ हस्तांतरण यानी DBT के तौर पर किसानों को देना चाहिए। BKS की तरफ से एक और मांग की गई कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली 6,000 रुपये के न्यूनतम आय समर्थन को मुद्रास्फीति से जोड़ा जाना चाहिए और समय समय पर इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि यह एक अत्यधिक लोकप्रिय योजना है जिसे 2018-19 में शुरू किया गया था। तब से मुद्रास्फीति के कारण कृषि लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। छोटे किसानों को तनाव से उबारने के लिए इसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। BKS ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की भी वकालत की है। साथ ही ये भी कहा कि कार्ड धारकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के बिना ही माइक्रो प्रोसेसिंग खाद्य इकाइयों को स्थापित करने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मिश्रा का तर्क है कि FSSAI प्रमाणन हासिल करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। सरकार के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा है और इसके आधार पर उन्हें उद्यमी बनने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए। यह रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। संघ के किसान संगठन ने इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें बताया गया है कि मोदी ने इसे आर्थिक सफलता का आधार बताया था। इसके लिए BKS ने गायों पर केंद्रित जैविक खेती को लेकर अनुसंधान और नॉलेज बढ़ाने के उद्देश्य से देशभर में 51 यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। मिश्रा ने दावा किया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता की सुविधा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा BKS ने ग्रामीण कृषि बाजारों में 22,000 हाटों को विकसित करने की योजना में सुस्ती का मुद्दा भी उठाया। इस योजना की घोषणा दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ की थी। BKS के एक पदाधिकारी ने दि प्रिंट को बताया कि इस आवंटन का अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए इस योजना को नए सिरे से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आरएसएस का श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ 28 नवंबर को ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक का हिस्सा था। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी बीएमएस की प्रमुख मांगों में से एक रही। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसे अपने चुनावी वादों में शामिल कर रखा है। ओपीएस को 2004 में समाप्त कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में बदल दिया गया था, जिसके कारण कई आंदोलन हो चुके हैं क्योंकि नई योजना में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ घटे हैं। बीएमएस के महासचिव रविंद्र हिमते ने द प्रिंट से बातचीत में कहा कि संगठन ने नीतिगत ढांचे के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम स्वास्थ्य कवर और पेंशन लाभ की भी मांग की है। हिमते ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के लगभग 28 करोड़ श्रमिकों का डेटा है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धन के आवंटन की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उन्हें सबसे आखिर में मिलने वाले वेतन की 50% पेंशन आवंटित की जा सकती है। उनके मुताबिक बजट का फोकस असंगठित क्षेत्र के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ गांव आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर होना चाहिए। बीएमएस ने यह भी दावा किया कि हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की, लेकिन राज्यों की तरफ से इसका उचित ढंग से वितरण नहीं किया गया है। संगठन का कहना है कि ऐसा न करने वाले राज्यों को चेतावनी दी जानी चाहिए। आरएसएस के सहयोगी संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना का मुद्दा भी उठाया, जिस पर उसने जनवरी में विरोध प्रदर्शन किया था। अपनी मांग दोहराते हुए बीएमएस ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह की जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि इससे सभी 70 लाख पात्र पेंशनभोगियों को लाभ होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने की वकालत करते हुए बीएमएस ने बुजुर्गों के लिए सावधि जमा योजना यानी एफटी की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने और रेलवे यात्रा रियायतों को बहाल करने की मांग रखी। बीएमएस ने आगे ये प्रस्ताव भी दिया कि आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कानून लाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार उन्हें बीच में ही बंद न कर सके। घरेलू व्यापारियों और लघु उद्योगों के हितों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे आरएसएस के एक अन्य सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच यानी एसजेएम ने वित्त मंत्री से चीन से बुनियादी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ाने को कहा है। एसजेएम 28 नवंबर को अर्थशास्त्रियों के साथ सीतारमण की परामर्श बैठक का हिस्सा था। सीतारमण ने बजट 2022 में खासतौर पर छतरियों और नकली आभूषणों सहित ऐसी कई वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क की घोषणा की थी। एसजेएम के राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्विनी महाजन ने द प्रिंट को बताया कि निकाय ने इस बात पर जोर दिया कि बजट को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों में विनिर्माण बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए चीनी आयात को हतोत्साहित करना जरूरी है। चीनी सामानों पर शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। स्वदेशी लॉबी ने यह प्रस्ताव भी रखा कि मत्स्य पालन, बागवानी और इससे संबद्ध सेवाओं जैसी गैर फसल गतिविधियों के लिए अधिक बजटीय प्रावधान करके ग्रामीण क्षेत्र को राहत पहुंचाई जानी चाहिए। महाजन ने कहा कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी बहुत कम है, इसलिए गाँव से शहरों की ओर बहुत अधिक पलायन होता है। हमें ग्रामीण भारत में रोजगार सृजित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि सीतारमण को दिया गया एक और सुझाव ये था कि कॉरपोरेट क्षेत्र की तरफ से अनुसंधान और विकास पर खर्च के लिए एक अनिवार्य आउटले की व्यवस्था की जाए। महाजन ने कहा कि इसे देश के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर कानून की तरह लागू किया जा सकता है, जिसके तहत एक निश्चित राशि से अधिक कमाने वाली कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण पर खर्च करना होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश में अनुसंधान आधारित माहौल बनाने की रूपरेखा तैयार होगी। हालांकि ऐसा लगता है कि भारत महामारी से संबंधित सबसे खराब आर्थिक झटकों से उबरने लगा है, लेकिन विकास अब भी कोविड पूर्व स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे आय और रोजगार को लेकर दृष्टिकोण कुछ हद तक निराशाजनक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी, रूस यूक्रेन युद्ध और कर रियायतों के लिए बहुत कम विकल्प होने के बीच सीतारमण को अगले बजट में राजकोषीय खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच अनिश्चित संतुलन को साधना होगा। साथ ही कर्नाटक, तेलंगाना और हिंदी बेल्ट वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में होने वाले चुनाव को भी ध्यान में रखना होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने दी प्रिंट से बातचीत में कहा कि सरकार अपने सामने मौजूद चुनौतियों से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए खर्च बेहद अहम होगा और रोजगार एक ऐसी चुनौती है जिस पर आगामी बजट में विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह बताता है कि सरकार इस समस्या से अवगत है। एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि चुनावी राज्यों में महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बड़े मुद्दे बन सकते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि 543 लोकसभा सीटों में से 116 ऐसे राज्यों से आती हैं जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को यह देखना होगा कि इन प्रमुख राज्यों में रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन कैसे किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले यह एक सेमीफाइनल बजट होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के अगले अंक के साथ। नमस्कार।